السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. आजकल हम सब कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों में अपना हिस्सा डाल लें। हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो पहले से आम दिनों से ज़्यादा इन दिनों के अंदर नेकी के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले और दौड़ लगाए। मगर जहाँ हमारी नज़र नेकी के कामों की तरफ होती है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि हम ये ज़रूर देखते रहें कि कहीं कोई गुनाह हमसे सरज़द तो नहीं हो रहे। जहाँ हम रोज़ा रख रहे हैं, वहाँ साथ साथ कोई अल्लाह की नाफरमानी के काम तो नहीं कर रहे। याद रखिए, गुनाहों की अपनी नहूसत होती है, और अगर इंसान को अपने गुनाहों की नहूसत का पता चल जाए तो इंसान कभी भी गुनाह ना करे। इमाम इब्नुल कय्यम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें गुनाहों का फौरी असर ना भी नज़र आए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुनाह का असर 40 साल के बाद जाहिर होता है। तो इसलिए इसको मामूली नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बहुत गुनाह करूं भी तो कौन सा मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, और अगर मुसीबत नहीं आई तो इसका मतलब है कि मैं सही कर रही हूँ। कि गुनाहों पे कभी दलेर ना हो, इस चीज़ का एहसास रखें कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, और ये नाफरमानी करने के बाद मुझे ये ना हो कि इसकी सज़ा भुगतनी पड़ जाए। और इमाम इब्नुल जौजी फरमाते हैं कि बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाली कोई गम होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता। कोई यानी उसको औलाद की तरफ से कोई परेशानी आ जाती है, उनकी तरफ से कोई गम सहना पड़ जाता है, और ऐसा हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए ये बात जहन में रखिएगा कि गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। हो सकता है इस दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाए, या हो सकता है आखरत में। इसीलिए ये बख्शिश के दिन है, इनके अंदर कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लें, और बजाय इसके कोई सज़ा हमारे ऊपर आए या हमें इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस अपनी औलाद या अपने घर बार या किसी भी और सूरत में, किसी मुसीबत की सूरत में देखने पड़े, तो उससे पहले ही मैं अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करूं कि वो मुझे माफ़ कर दे और अपनी रहमत से माफ़ कर दे, सज़ा के साथ नहीं। बाज़ माफ़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि इंसान को सज़ा से गुजर के फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देता, क्योंकि अल्लाह ताला का हक इतना बड़ा है कि उसके हक में तो हमें कभी भी कमी नहीं करनी चाहिए थी, उसका हर हुक्म मानना चाहिए था। लेकिन चूंकि इंसान खताकार है, उससे गुनाह भी होते हैं, वो गिरता भी है, वो बचता भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिसल जरूर जाता है। तो पाक कोई भी नहीं हम में से, कोई कितना भी अपने आप को नेक समझे, लेकिन हकीकत ये है कि हम में से कोई भी पाक नहीं, बल्कि इब्ने आदम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम सबके सब खताकार हैं। और जब अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा, तो फिर हम क्यों ना उससे बख्शिश मांगे, जो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इन दिनों में अस्तग़फिरुल्लाह 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 इसका विर्द जारी रखें, और इस्तग़फार की दुआओं को शामिल रखें। आज हम सूरह फातिहा में जिस हिस्से पे बात करेंगे वो है इहदिनस्सिरातल्मुस्तकीम। ये है जो इंसान की तलब है, सिरात मुस्तकीम। सबसे बड़ी उसकी ज़रूरत ये है इस दुनिया में कि उसको हिदायत मिल जाए। ये ना हो कि वो भटकता हुआ फिरता रहे और उसके बाद इसी तरह गुमराही के रास्ते पे चलते चलते वो दुनिया से चला जाए, और आगे जाके सरप्राइज़ हो कि इस रास्ते का अंजाम तो जहन्नुम थी। तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत है कि उसको सीधा रास्ता मिल जाए, वो रास्ता जो जन्नत तक स्ट्रेट जाता हो, ये है उसकी जरूरत, जिसमें कोई हेर फेर ना हो, पगडंडियां ना हो, जिससे कहीं वो एग्जिट ना ले ले, जिसमें कोई फिसलन ना हो जाए, जिसको वो भूल ना जाए। तो वो इंसान कहते कहता है कि अल्लाह मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ, यानी तेरे मदद के बगैर मैं नहीं चल सकता, और मैं तुझसे मांगता हूँ तो वो चीज़ मांगता हूँ जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी मेरी ज़रूरत है, और वो है सिराते मुस्तकीम। अल्लाह ताला जानता है कि हाँ हमारी ये कितनी बड़ी ज़रूरत है। जब भी उसने हर नमाज की हर रकत, हर नमाज में एक दफ़ा नहीं, हर रकत में एक दफ़ा ये मांगने का लाजमी कर दिया कि तुम ये मुझसे मांगो, और जाहिर है वो अता करने वाला है, उसका इरादा है अता करने का, तभी तो वो कहता है मुझसे मांगो। अगर उसने देना ही ना होता तो वो क्यों कहता मुझसे मांगो। देखिए ना, हमने किसी को देनी ना हो ना चीज़, तो हमारा दिल भी नहीं करता ये हमसे मांगे। अल्लाह ताला चाहता है अता करना, तभी तो वो हमें कहता है कि तुम हर रकत में मुझसे कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये नहीं है फरमाया कि हर रकत में मुझसे को पानी मिले, हर रकत में मुझसे को खाना मिले, हर रकत में मुझसे को सांस आए, हर रकत में मुझसे को जिंदगी मिले, रिज्क मिले, औलाद मिले, घर मिले, ये नहीं मांगने को कहा गया। सबसे बड़ी ज़रूरत, नेसेसिटी इंसान की ये है कि वो आग से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। दैट्स द अल्टीमेट सक्सेस। छोटी छोटी सक्सेसेस हमें दुनिया में मिलती रहती हैं, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस, जो असल कामयाबी है, वो ये है कि कोई इंसान जहन्नुम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और इसी के लिए हमें ये दुआ सिखाई गई कि तुम मुझसे ये मांगो रास्ता, जो सीधा रास्ता है, जो क्लियर रास्ता है, जो रोशन रास्ता है, तो कुशादा रास्ता है ये दीना। अब हमने जब कह दिया ना, अल्लाह तेरे बगैर तो हमारा कोई भी नहीं काम हो सकता, हम तो तुझी से मदद मांगते हैं, तो जब ए दिना भी कहा तो अल्लाह मैं खुद नहीं चल सकती, अल्लाह तू चला दे, ए दिना में ये है कि तू चला दे, राह दिखा दे, चला दे और मंजिल तक पहुंचा दे, तीनों माने इसके अंदर हैं। कि मैं तो दिख भी जाए रास्ता तो हो सकता है चल ना सकूं, चल भी पड़ूं तो हो सकता है फिसल जाऊं, तो है अल्लाह दिखाना भी चलाना भी, और जब तक मैं वहां पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ना जाऊं तो मुझे छोड़ना नहीं मेरे रब। सोचिए कितनी बड़ी चीज हम मांग रहे हैं, लेकिन क्या हमारा इरादा भी है इस पे चलने का, या इरादा ही नहीं है? देखिए ना, अगर मैं चलना ही नहीं चाहती अल्लाह के रास्ते में, मुझे एलर्जी है इससे, मुझे ये रास्ता पसंद ही नहीं है, मैं इसको मुल्लाओं का रास्ता और मुल्लानियों का रास्ता समझती हूँ, और अल्लाह के रास्ते पे चल के लो क्या हम दुनिया के रास्ते पे चलें, अल्लाह के रास्ते पे क्या चलना, वो तो हमें पसंद ही नहीं है, तो फिर हम क्या मांग रहे हैं, क्या मांगते हैं? और फिर देखें ए दिना, अब हम कहें लो हम तो पहले ही हिदायत पर हैं, हमें और क्या हिदायत चाहिए। तो ए दिना में मतलब ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर ये मांग रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो वो तो पहले ही हिदायत पे थे, या सहाबा तो पहले ही हिदायत पे थे, तो वो फिर क्यों मांग रहे थे? इसमें ये भी माना है कि हमारी हिदायत को और बढ़ा दे, इसमें इजाफा कर दे, इसका मतलब हिदायत के भी दर्जात हैं, और हिदायत और हिदायत। हर वक्त इंसान को हिदायत की जरूरत है, वो किसी भी बड़े ऊंचे से ऊंचे दर्जे पे भी पहुंच जाए तब भी उसको हिदायत की जरूरत है, क्योंकि ईमान घटता बढ़ता रहता है। इंसान आज बहुत ऊंचे उसके ऊपर है ईमान के साथ, कल को ईमान उसका घट जाएगा, और शैतान तो हर वक्त पीछे लगा हुआ है, इताअत के रास्ते से हटाने में लगा हुआ है। तो जब इताअत का रास्ता नजर आ भी गया, तो जरूरी तो नहीं है मरते दम तक मैं उस पर चलती ही रहूं, अल्लाह ना करे कहीं शैतान ने फिसला दिया तो क्या होगा। तो हर बंदा, चाहे वो कितने ही ऊंचे दर्जे पे है, उसको मांगते रहना है हिदायत, मरते दम तक मांगते रहना है, क्योंकि मरते दम तक जरूरत है, क्योंकि किसी वक्त भी बहक सकता है, क्योंकि मरने से पहले भी कोई, अल्लाह ना करे, कोई इस रास्ते से फिसल सकता है, और अगर खात्मा इस पे ना हुआ तो फिर क्या होगा। हर चीज के खात्मे से ही डिटरमिन किया जाता है कि वो चीज किस पाए की है। और आमाल का भी दारो मदार बिल खवातीन, खात्मे के ऊपर है। तो इसका मतलब कि अगर खात्मा नहीं सही हुआ तो सब किया कराया गारत हो गया जो पहले कर रहे थे, चाहे कितनी भी नेकियां कर रहे थे। तो फिर तो हर एक को जरूरत है ना, और हर टाइम जरूरत है, और कभी भी इस जरूरत से आप फारिग नहीं हो सकते, चाहे आप कितना ही अच्छा चल रहे हो। अब ये रास्ता कौन सा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम कौन सा है, मुझे कैसे समझ आएगा क्या है सिराते मुस्तकीम। तो उसकी फिर डेफिनेशन बता दी गई, सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता है अल्लाह जिन पे तेरे इनाम याफ्ता लोग चले। इनाम याफ्ता लोग कौन से हैं, अल्लाह ताला ने सूरह निसा में बता दिया, मेरे इनाम याफ्ता लोग वो हैं जो अंबिया हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालेहीन बंदे मेरे हैं ना, वो हैं अनअमता अलैहिम, जिन पर मेरा इनाम हुआ। तो इसका मतलब किसका रास्ता, अंबिया के रास्ते पे चला देना, सहाबा के रास्ते पे चला देना, सालेहीन के रास्ते पे चला देना। तो हमें पता है ना कि अंबिया का रास्ता, हमारे नबी का रास्ता कौन सा है, और वो कैसे पता चलेगा। हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा रास्ता छोड़ के गए थे, हमें हदीस से पता है, हमें उनकी सुन्नत से पता है, वही उनका रास्ता है, वही अनमता अलैहिम का रास्ता है, उस पे चल पड़े और इसी पे चलते ही चले जाएं। और जब हम तो किसी रास्ते पे चलते हैं तो हम ये देखते हैं भाई और कौन लोग चल रहे हैं, सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर लोग नहीं चल रहे तो हाय मैं कैसे अकेली चलूं, सब तो एक तरफ को जा रहे हैं, लो मैं क्या दूसरी तरफ चल पड़ूं। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, जिधर सब चल रहे हैं उधर चलो, आजकल सारे यही करते हैं। मैं तो वही रास्ता लेती हूँ जिस पे सब चल रहे होते हैं, मैं तो वही तरीका अपनाती हूँ जो आजकल नॉर्म है, मैं तो दूसरे तरीके पे नहीं जाना चाहती। लेकिन याद रखिए, सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे हमेशा। आप देखें अंबिया के साथ भी, क्या ज्यादा लोग होते थे जो उनके साथ होते, या ज्यादा लोग होते थे जो उनको अपोज करते थे। ज्यादा लोग होते थे ना जो उनकी मुखालफत करते थे। कौम में क्यों तबाह हुई, पूरी पूरी कौम तबाह हो रही है, ऐसे क्यों नहीं हुआ कि दो चार लोग कौम में रह गए और बाकी अंबिया के साथ तो बहुत सारे लोग थे। नहीं, अंबिया तो हमेशा चंद एक लोगों को लेकर निकल जाया करते थे, कौम में सारी तबाह हो जाती थी। इससे पता चलता है अक्सरियत हमेशा नाफरमानों की रहती है, अक्सरियत फासिकीन है, कुरान भी कहता है अक्सरियत फासिकीन, अक्सरियत नाशुक्रे। अगर तुम अक्सरियत के रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है सूरह अनाम में, तुम भटक जाओगे। तो याद रखें, सिराते मुस्तकीम अक्सरियत का रास्ता तो नहीं होगा। अगर आपको अक्सरियत के रास्ते पे चलने का ही शौक है कि सब चलें तो फिर हम चलेंगे, सब ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो मैं भी कर लूंगी। तो इमाम इब्नुल कय्यम ने फरमाया कि तरीके हक जो है ना, हक का रास्ता, उसको पकड़ लो, और हक के रास्ते पे चलने वालों की तादाद की किल्लत से घबराना नहीं कि इतने थोड़े लोग हैं, इतने थोड़े लोग चल रहे हैं तो मैं कैसे इस रास्ते पे जाऊं, और बातिल रास्ते से बच जाना। और जो हक के रास्ते पे चलने वाले हैं उनकी अक्सरियत हमेशा कम ही होगी, जो बातिल परस्त हैं उनकी कसरत तादाद से धोखा ना खा जाना। ये ना समझ लेना कि यही ठीक ही होंगे, सब ये कर रहे हैं तो जाहिर है पागल तो नहीं है, इतने लोग ये ऐसे ही चल रहे हैं आजकल, आजकल सारी औरतें ऐसी हैं, आजकल सारे आदमी ये कर रहे हैं, आजकल सभी लोग ये करते हैं, आजकल तो यही ट्रेंड्स हैं, तो हम कैसे कुछ और करने लग पड़े, लोग क्या कहेंगे। नहीं, सिराते मुस्तकीम के लिए अगर तुम ये देखने लगोगे ना कि लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर तो नहीं चल सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस्लाम का आगाज जो है अजनबियत से हुआ था, और एक वक्त आएगा कि ये दोबारा अजनबी हो जाएगा। अतूबा लिल गुरबा, तो खुशखबरी हो अजनबियों के लिए, घबराना नहीं अगर आप इस रास्ते में अजनबी से लगे, ये किधर को चल पड़े, ये क्या बन गए हैं, ये इन्होंने क्या तरीके अपना लिए हैं। तो सालेहीन का ये रास्ता जो है ना, अंबिया का जो रास्ता, इसमें हमेशा कमी लोग आपको नज़र आएंगे, अक्सरियत नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा खुद को इसके लिए तैयार करें कि अकेले भी चलना पड़े तो चलूंगी, मुझे नहीं परवाह मेरी दोस्तें क्या करती हैं, माशरा क्या कर रहा है, मेरी बरादरी क्या करती है, मेरा खानदान क्या कहता है, इससे ऊपर उठ जाएं। और देखिए एक दिन ना हम सबको चला दे, मोमिन सेल्फिश नहीं होता कि सिर्फ अपने लिए दुआ मांगे, सबके लिए ही मांगता है, फिर जमा का सीगा, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है तुम सारों के लिए ही दुआ करा करो, उसको पसंद है। हम तो सेल्फिश होना चाहते हैं ना, बस मुझे खैर मिल जाए, बाकी सारे बेशक जाएं जहन्नुम में, नहीं सबके लिए मांगो। अल्लाह ताला देखें अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत करता है कि वो चाहता है हर बंदा सारों के लिए मांग ले, सभी बच जाएं जहन्नुम से, सभी बच जाएं रुसवाई से, आखरत में हलाकत से, सभी को सिराते मुस्तकीम मिल जाए जो हक का रास्ता है। और जिसकी पहचान यही है कि वो अंबिया का रास्ता था। अंबिया के रास्ते, सालेहीन के रास्ते क्या कभी आसान भी होते? नहीं, मुश्किल होते हैं, इसमें मुश्किलात भी आती हैं, रुकावटें भी आती हैं, इसमें चलने वालों को लोग सताते भी हैं, लोग उनकी मुखालफत भी करते हैं, लोग उनको तंग भी करते हैं, उनके नाम भी रखते हैं, उनका मजाक भी करते हैं, लेकिन जब हमने अगर फैसला कर लिया एहदिना सिरातल मुस्तकीम हम रोज मांग रहे हैं, तो हमें क्या परवाह फिर, यहाँ तो मांगो ही ना, बस बरादरियों के रास्तों पे ही चलना है, अगर आबाओ अजदाद के रास्तों पे चलना है और आज के ट्रेंड्स के मुताबिक चलना है, आज के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके रास्तों पे चलना है, या जो बड़े एलीट क्लास है वो आजकल ये करती है, उन्हीं के रास्ते अगर आपने लेने हैं तो फिर अल्लाह ताला से क्यों सिराते मुस्तकीम मांगते हैं? हाँ, तो फिर क्या फायदा इसको मांगने का, पहले अपने दिल को तो मना ले कि इस रास्ते पे मैंने चलना है, अगर दिल ही नहीं मान रहा तो फिर ये दुआ बेफायदा है, फिर ये कैसी दुआ है? ये सिर्फ इबादत में नहीं है कि इबादत में मुझे उनके रास्ते पे चलाना, उनकी जैसी नमाज हो जाए, उनके जैसा रोजा हो जाए, उनके जैसे तरीके, हर जिंदगी के फेज में या अल्लाह उनका जो रास्ता था ना वही मेरा रास्ता बन जाए, क्योंकि उनका रास्ता वो है जो अल्लाह ताला को पसंद है, जो अल्लाह ताला के नेक लोगों का रास्ता है ना वही अल्लाह ताला ने चुन लिया है कि ये है, ये एक हमारे लिए मयार रख दिया, एक स्टैंडर्ड है वो हमें दिखा दिया, ये है जो स्टैंडर्ड अल्लाह ताला को रिक्वायर्ड है, जिस पे वो बंदे को देखना चाहता है, वो कौन सा स्टैंडर्ड है, वो वाला रास्ता जिस पे नबी चले, सालेहीन चले, सिद्दीकीन चले, शुहदा चले, वो स्टैंडर्ड रास्ता है, वो है जिस रास्ते पर अल्लाह ताला ने अपनी मोहर लगा दी कि मैं इस रास्ते से पे चलने वालों से खुश होता हूं, उस पे चल के दिखाना है हमने। और उसके लिए चूंकि हम खुद नहीं चल सकते तो हम इसलिए दुआएं मांगते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन क्या बात है, हम मांगते तो ये हैं लेकिन रास्ते तो उनके हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, नेक तो हम नहीं होना चाहते, सालिहीन का रास्ता हमें नहीं पसंद है, हम तो हजूम की तरफ जाना चाहते हैं जिस तरफ सब चलते हैं, रसूल का रास्ता, उनके जैसे तरीके, उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसा लिबास, उनके जैसी शक्लो सूरत, ये तो हमें पसंद ही नहीं होती। तो हालांकि यही है इनाम याफ्ता, अगर हम भी इनाम पाना चाहते हैं अल्लाह ताला का तो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और रोज मांगते हैं कि अल्लाह ताला मगदूब के रास्ते पे ना चलाना, जिन पे तेरा गुस्सा हुआ, वो चाहे कोई भी हो, चाहे यहूदी हैं, चाहे कोई और क्रिमिनल्स हैं, कोई भी, अल्लाह ताला उनके रास्ते पे ना चलाना, और दौलीन के रास्ते पे ना चलाना जो गुमराह हो गए, जिनसे रास्ता ही गुम हो गया, अल्लाह उनके रास्ते पे भी ना चलाना, राह ही गुम कर बैठे वो, उनको रास्ता नजर ही ना आया, या वो फिसल ही गए रास्ते से। तो जिन पे तेरा गुस्सा हुआ, अब गुस्सा किस किस पे हुआ? यहूद पे तो हुआ ही हुआ जो कुरान में है, लेकिन जिस पे भी अल्लाह तेरा गुस्सा हुआ, खास यहूद नहीं यहाँ पे सिर्फ कहा गया, ये तो हमें आगे पता चलता है यहूद पे हुआ, लेकिन जिस पे भी, जिस जो भी अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं, जो बड़े बड़े मुजरिम हैं, उन पे अल्लाह का गजब हुआ ना, तो उनके रास्ते पर ना अल्लाह ताला चलाना। क्योंकि मैं किस पे चलना चाहती हूँ? अल्लाह उस रास्ते पर जिस रास्ते पे चलने वालों से तू खुश हुआ, लेकिन मैं फिर उसके बाद फिर उन्हीं के रास्ते पे चलती हूँ जिन पे अल्लाह का गुस्सा हुआ। और गुमराहों से सिर्फ ईसाइयों मुराद नहीं है, ईसाई तो रास्ता गुम कर ही गए, उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, नाउज़ु बिल्ला, वो तो एक रास्ता गुम किया ही उन्होंने, लेकिन जो भी गुमराह हो गया, हिदायत के रास्ते से फिर गया, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे ना चलाना। और आजकल बहुत सारी गुमराहियां हैं, बहुत सारी गुमराहियां, कोई किसी तरफ बुला रहा है, कोई किसी तरफ बुला रहा है, गुमराही के रास्ते से बचा लेना। लोग अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, लेकिन गुमराही के रास्ते पे खड़े में और लोगों को उस तरफ बुला रहे हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम पे गुमराही के रास्ते पे बुला रहे हैं, अल्लाह उनसे भी बचा लेना। और जिन रास्तों को हमने नापसंद किया है और कहा है इन पे ना चलाना, अल्लाह दुआएं की हैं, और उसके बाद हम उन रास्तों को पसंद करने लगे और उन्हीं के तरीके हमें अच्छे लगने लगे और उन्हीं का रहन सहन हमें पसंद आए और उन्हीं के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहें, तो ये क्या है? ये तो हमने वो दुआ जो हमने मांगी थी उसको ही निगेट कर दिया, उसी को हमने रद्द कर दिया, क्योंकि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम इन रास्तों से बचें। हम वैलेंटाइन भी करना चाहते हैं, हम क्रिसमस भी करना चाहते हैं, हम और भी उनके सारे तरीके करना चाहते हैं, हमें वो ही पसंद आते हैं बस। तो फिर क्या हम क्या कह रहे हैं कि हमें बचा लेना इस रास्ते से, और साथ हम इरादा यही रखते हैं कि हमें ये इसी रास्ते पे चलना है। और जब ये दुआ मांग लेते हैं ना, तो फिर हम आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब है कि अल्लाह ताला कबूल कर लेना, कबूल कर लेना या अल्लाह। हम कितना ज्यादा चाहते हैं कि हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, और पता नहीं हमें समझ भी नहीं है कि हम मांग क्या रहे हैं, इतनी बड़ी दुआ मांग के, अपने लिए सबसे बड़ी खैर मांग के, और फिर हम वो ही रास्ते, वो ही तरीके और उन्हीं बातों को एंजॉय करें और उनके ऊपर चलें और गुमराहों को ही हम अपना रोल मॉडल बनाएं, ये कहाँ की अकलमंदी है? तो ये इंसान को क्लींस कर देती है ये सूरत, उसके ईमान को बढ़ा देती है, उसको याद दिला देती है कि मैंने किधर चलना है और कौन से रास्ता छोड़ना है। एवरी डे हम याद करते हैं ये रास्ता नहीं, ये रास्ता नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम। इंसान सिराते मुस्तकीम को तो तलाश करने वाला होना चाहिए कि मैंने उस रास्ते पे चलना, जिस रास्ते पे चलना हो, क्या देखना नहीं होगा कि वो वाकई मैं उस पे चल भी रही हूं या नहीं, आंखें खोलनी पड़ेंगी या नहीं, या अंधाधुंधी इंसान किसी रास्ते पे चल सकता है? नहीं चल सकता, अंधा तो फिर गुमराह ही होगा ना, अंधा तो रास्ता गुम ही करेगा ना। लेकिन हम सब अंधे रह के और चाहते हैं सिराते मुस्तकीम मिल जाए, कैसे? क्योंकि इल्म के बगैर होना अंधा होना ही है। देखें, अगर आपको एक रास्ते पे जाना है लेकिन आपको उसका इल्म ही नहीं वो रास्ता है कहाँ, तो अंधापन ही है ना। जैसे अंधे को नहीं पता, इस तरह आपको भी नहीं पता। आपने एक जगह पहुंचना था, आपने मसलन मक्का पहुंचना है, और आप रास्ता ले लें दूसरी तरफ का, वो ईस्ट में हो, आप वेस्ट की तरफ चल पड़े, तो आप कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए जरूरी है रास्ते का इल्म लेना। तो हम क्यों नहीं रास्ते का इल्म लेते? सिराते मुस्तकीम क्या है? जब इंसान ये मांग लेता है तो बस फिर उसके बाद आगे कुरान शुरू हो जाता है इस सूरा के बाद। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुमने मांग लिया ना मुझसे सिराते मुस्तकीम, ये देखो मैं तुम्हें सिराते मुस्तकीम दिखाता हूँ। ये है अल्लाह ताला का कलाम है, सिराते मुस्तकीम। ये चलाएगा उस रास्ते पे जो अम्बिया का रास्ता था, जो सालेहीन का रास्ता था। बस तुम इस रास्ते पर चल पड़ो, ये मैसेज है, पूरा कुरान मैसेज है। अब उससे हम अंधे रहें और सोचते रहे मैं सिराते मुस्तकीम पे चल ही रही हूँ, कैसे चल रहे हैं? आपको तो पता ही नहीं रास्ता है क्या, आपने आज तक कुरान का तर्जुमा ही नहीं पढ़ के देखा, उसको समझा ही नहीं, उसको जाना ही नहीं, तो चलेंगे कैसे? पहले तो जानने का स्टेप आता है ना, जो जान ही नहीं पाया आज तक। इतनी उम्र हो गई, 30 साल, 40 साल, 50 60 साल, आज तक नहीं पता वो रास्ता है कहाँ, वो कौन सा रास्ता है, और मांगे जा रहे हैं याला मुझे सिराते मुस्तकीम पे चला दे। देख तो लें, आंखें तो खोल लें, जान तो लें उस रास्ते को, फिर आपकी मर्जी आप चलें या नहीं चलें। जाने तो सही कम से कम, ये कुरान इसको जानने और इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए कोशिश करें, मेहनत करें, और अपने आप को इस रास्ते पे चलते रहने की एक तमन्ना रखें कि मैंने मरते दम तक इसी रास्ते पे रहना है। अल्लाह ताला हमें इसी पे मौत अता फरमाए। आज की दुआ जो है वो वही दुआ है जो हमें कामयाबी तक पहुंचाएगी, और वो है 3 दफ़ा फजर के बाद और 3 दफ़ा असर के बाद आपने कहना है, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग से बचा लेना। अगर आग से बच गए तो फिर देखें आगे इंसान के लिए दूसरा सिर्फ एक ही मंजिल है और वो है जन्नत। तो अपने लिए आग से बचाओ मांगे, अल्लाहुम्मा आजिर ना मिनन नार कहेंगे तो अल्लाह हम सबको बचा लेना आग से, और अजीर नी कहेंगे तो अल्लाह मुझे बचा लेना आग से। और आज का जो जिक्र है वो जिक्र है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, और जितनी चीज़ों के ऊपर सूरज तुलू होता है उन सब में ज़्यादा महबूब मुझे ये जिक्र है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो इस जिक्र को ज़रूर करें और तलाश करें दुआ की कबूलियत के मौके, और उनमें दुआ करें अल्लाह ताला से, क्योंकि कबूलियत के मौके, इफ्तार का वक्त कबूलियत का वक्त है, उस वक्त दुआ करें। इसी तरह सहरी का टाइम कबूलियत का टाइम है, उस वक्त दुआएं करते जाएं और सहरी खाते जाएं। इसी तरह जब आप मस्जिद जाते हैं तरावी पढ़ने के लिए या वैसे नमाज के लिए मस्जिद जाएं, तो जो अजान और इकामा के दरमियान वक्त है वो कबूलियत का वक्त है, उस वक्त दुआएं किया कीजिए, उस वक्त अल्लाह ताला से मांगा करें कि अल्लाह ताला मुझे आग से बचा लेना। और इन दिनों में हर रात जो है रमज़ान की, हर रात अल्लाह ताला इंसानों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है, तो अल्लाह ताला से जहन्नुम से आज़ादी मांगे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। कितनी छोटी सी दुआ है, इस छोटी सी दुआ को याद कर लीजिए और इसको मांगते रहिए। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए जो आखरत की कामयाबियाँ पाने वाले हैं और जिनको अल्लाह ताला आग से निजात दे देता देने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको आग से निजात अता फरमाए। और याद रखिए मैंने आपसे कहा था कि सदका ज़रूर करते रहें, सदका भी इंसान को अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करने वाला है, और आग जो कब्र की गर्मी है उससे भी बचाता है और जहन्नुम की आग से भी बचाने वाला है। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे जो ऊपर वाला हाथ रखते हैं हमेशा और देने वाले हैं। तो सदके के जरिए इंसान को कयामत के दिन की जो गर्मी है, कयामत के दिन जो सूरज करीब होगा और इतना करीब होगा कि इंसान शराबूर होंगे अपने पसीने के अंदर, उस वक़्त सदका जो है उस गर्मी के अंदर इंसान के लिए साया बन जाएगा। तो थोड़ा निकालें या ज़्यादा, लेकिन निकालें ज़रूर। अगर गर्मी से बचना चाहते हैं, हमसे तो दुनिया की भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, आखरत की गर्मी तो कैसे बर्दाश्त होगी जब सूरज इतना करीब होगा। तो हम उसका इंतजाम करें, समझ लें कि ये कब्र की कब्र के अजाब से भी बचाता है, तो कब्र में कोई नहीं मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए खड़ा हो जाए, मैं ये मेरा सदका होगा जो वहां पे मुझे बचाएगा। ये जब अजाब आने लगेगा ना कब्र का, तो एक तरफ ये सदका खड़ा हो जाएगा, एक तरफ कुरान खड़ा हो जाएगा, एक तरफ नमाज खड़ी, ये जो नेकियां है ना यही खड़ी हो जाएंगी। जिस वक्त हमारे बहन भाई, माँ बाप, रिश्ते, औलाद, कोई भी हमारे साथ नहीं होगा, उस वक्त सदका हमारे साथ होगा वहां पे। तो इसके इंतजाम करें अपनी कब्र का, कि वहां के अजाब से बचने के लिए मैं आज सदका करूं। और ये नहीं कि सिर्फ अपने माल से सदका करें, अपनी जान से भी सदका करें, यानी अपने बदन को भी लगाएं अल्लाह के रास्ते के अंदर, कोई अल्लाह ताला के रास्ते में मेहनत करें। और ये जो माली इबादात है ना, चाहे जक़ात है, चाहे सदका है, चाहे इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये माली इबादात है, इनको इबादत समझ के करना चाहिए, कि ये भी एक इबादत मैं कर रही हूँ और मेरी ये इबादत अल्लाह के लिए हो। देखिए सदका सिद्क से है ना, सदके को इसीलिए सदका कहते हैं कि इसके जरिए इंसान अपने ईमान की सच्चाई साबित करता है कि मेरा अल्लाह पे ईमान है। क्योंकि कोई इंसान ऐसे दे नहीं सकता किसी को जब तक उसका अल्लाह ताला पे ईमान ना हो कि उसने मुझे लौटाना है, वो मुझे अता करेगा। तो सदका जरूर कीजिए और अपने हाथ को खुला रखें, और इन दिनों में ज्यादा करें, तंग ना आए कि आए वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, हम क्या किस हर एक को देते फिरें। याद रखिए अल्लाह ताला लौटाएगा, इस दुनिया में भी अल्लाह ताला इसका बदला लौटाता है, और आखरत में भी कई गुना करके लौटाएगा। तो इसलिए फकर से ना डरें, शैतान इंसान को फकर का डर देता है, खौफ देता है कि तुम फकीर हो जाओगे। जबकि हम देखें कि जिस वक्त हम शादियों पे खर्च करने लगते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हम फकीर हो जाएंगे। जब ख्वातीन ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं तो कभी नहीं सोचती कि हाय इतने पैसे हम यहाँ पे दे देंगे तो देखो हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे। जब वो किसी बुटीक पे किसी ब्रांड नेम के पर्स को खरीदने के लिए, किसी और ब्रांडेड चीज़ के लिए बेशुमार खर्च करती हैं, डिज़ाइनर के पास जाती हैं, इतना बेशुमार खर्च करती हैं, तब कभी नहीं सोचते हम कि देखो ये मैं कितने पैसे खर्च कर रही हूँ और ये तो कम हो जाएंगे, कभी ये ख्याल नहीं आता। लेकिन जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने लगते हैं तो इसका मतलब शैतान ये डालता है ना, और फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास माल कम हो जाएगा, तुम तो गरीब हो जाओगे, अब इतना भी देने की क्या जरूरत है। हालांकि यही है जो हमारी कब्र में काम आने वाला, और हशर के दिन अगर आज आपको गर्मी बहुत लगती है ना तो फिर इंतजाम क्यों नहीं करते हशर के दिन का, आज तो एसी चला लेंगे, वहां पे कौन सा एसी होगा, वहां पे ये सदका ही है जो इंसान के लिए ठंडक का बायस बनेगा और वो ठंडा साया बन जाएगा जब वहां पे कोई साया ना होगा। तो इस साये का इंतजाम यहां से करके जाना है। इसलिए सदका करने में कभी बुखल ना करें, अपने हाथ को खोलें इन दिनों के में, और फुकरा मसाकीन को जहां देते हैं, जहां पे आप जकात दे रहे हैं ना, तो सदका भी दें, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए जो भी हम थोड़ा बहुत उसके रास्ते में खर्च करने का कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे और हमें तौफीक दे मजीद खर्च करने की। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।